दोस्तों, SBS हिंदी पर हमेशा ये प्रयत्न रहता है कि आपको समाज में हो रही कुछ सकारात्मक चीजों के बारे में बताया जाए। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसे शख्सियत से कि जो युवा प्रतिभा तो है ही, साथ में वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि जो मानव तस्करी से पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर रही हैं। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि उनका जो NGO है, उनकी जो संस्था है, वो इसी क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ डेस्टिनी फाउंडेशन की स्थापक समृति सेन गुप्ता से। समृति, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
या थैंक यू सो मच।
पहला प्रश्न ये है कि डेस्टिनी फाउंडेशन नाम बहुत ही प्यारा लगता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली?
हाँ, मैं तो जैसे आम लड़की के जैसी थी, मैं एजुकेशन कंप्लीट कर रही थी, उसके बाद मुझे जॉब करना था, मुझे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इवन दो आई ग्रू अप इन द सिटी, जो है वो जो डेटा में, गूगल डेटा में आपका हाईएस्ट रैंक में आएगा, पता भी नहीं था, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ही कम है उसके बारे में, कोई बात नहीं करना चाहते, दे वॉन्ट टू कीप क्वाइट अबाउट दिस ट्रैफिकिंग एंड ऑल दिस इशू। तो मैं काम करते करते बाई चांस यू कैन सी हिज डेस्टिनी, और कोई ऊपर वाला का सम इंडिकेशन, तो मुझे वो मौका मिला कि मैं शेल्टर होम विजिट की और रेड लाइट एरिया प्रोजेक्ट एज ए वॉलंटियर, वो शुरुआत जो था मैं गई थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं पहली जो स्टेप था उसमें मैंने सोचा कि नहीं होगा मेरे से, हमसे नहीं होगा, मैं शायद नहीं आऊंगी, एंड ये सब क्या है, इतना गंदा प्लेस है, छोटा छोटा लड़की लोग वो पेरेंट्स का क्लाइंट का मदद करते हैं, सिगरेट लाते हैं, वो लीकर खरीदते, अल्कोहल खरीदते हैं, अच्छा नहीं लगता था, स्कूल नहीं जाते एनीवे। तो कुछ दिन जाने का बाद आई डेवलप, मुझे अच्छा सा बॉन्डिंग हो गया था वही उधर का वीमेन और बच्चे लोगों से। उसके बाद मैंने सोचा कि टर्निंग पॉइंट, मैं और कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे ये काम करना है। उसके बाद देन आई कंटिन्यूड 5 years, अंडरस्टैंडिंग, पता चलना था ये क्या है, इसके सोल्यूशन क्या होता है और कैसे ये हम लोग पूरा कॉम्बैट कर सकते हैं, वी कैन इरेडिकेट कर सकते हैं। तो वो उधर काम करने का बाद देन मैंने अलाहाबाद में मैंने सोचा कि अपना मैं कुछ करूँ, वो तो मैं वॉलंटियर कर रही थी किसी और ऑर्गेनाइजेशन। तो उधर में जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, मैंने उधर देखा कि बहुत NGOs है वो काम कर रहे, लेकिन कोई सेल्फ सस्टेनेबल नहीं लगा। सेल्फ सस्टेनेबल मतलब क्या होता है, अगर फिनेंशियल एड नहीं है, क्या होता है शेल्टर होम के बाद में जब 18 साल हो जाते लड़के लोग, वो लोग कहाँ जाते, क्या करते है, वो तो ऐसे ही वल्नरेबल बैकग्राउंड के है, ऐसे ही फैमिली में, फैमिली इधर ऑर्फन है, ब्रोकन फैमिलीज है, एक्सट्रीम पॉवर्टी में है वो लोग। तो वो स्ट्राइक किया, उसके बाद ही डेस्टिनी का मतलब जन्म हुआ, उसके बाद ही मैंने डेस्टिनी एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन सोचा था जिसमें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और 18 साल के बाद ये लड़की का कोई फ्यूचर बने, वो थॉट आया।
तो जैसे कि आपने कहा कि आपको ये लगा कि 18 साल के बाद जो लड़कियां हैं उन्हें कुछ सपोर्ट किया जाए, और हमने शुरुआत में ही कहा कि जो मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो सर्वाइवर हैं उनके लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, तो आपसे जानना चाहेंगे कितना सीरियस है ये इश्यू, कहाँ से आती हैं ये लड़कियाँ, क्या सारी भारतीय ही होती हैं या आसपास के देशों की लड़कियाँ भी इसमें ट्रैप हुई होती हैं?
हाँ, मैं इंडिया से, अगर मैं एक्चुअली ये इशू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक आई वांट टू क्लियर दिस आइडिया, ये ग्लोबल इशू है, ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में है तो US में नहीं है। US में बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और वो दूसरी तरह, उसका आकार थोड़ा अलग है और इंडिया में इसका अलग आकार थोड़ा अलग है, और इंडिया तो हाई है रैंक में और कलकत्ता भी नंबर 2 में है अभी पोजिशन में, क्योंकि बिकॉज हम लोग बॉर्डर करते हैं बहुत कंट्रीज से, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान से कलकत्ता बॉर्डर करते हैं, इसके लिए वो लड़की को इधर उधर आना जाना ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो जाता है, और फिर वो लोग को बिक्री कर दिया जाता है दिल्ली, मुंबई और समटाइम्स अब्रॉड। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर बोलेंगे आप, प्रोस्टिट्यूशन ब्रॉथल में तो बेचते हैं लड़का, छोटे बच्चे, लड़के बच्चे को भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, कोई ऑर्गेन सेलिंग हो जाता है, बेगिंग करवाते उन लोगों से, तो ये बहुत ही क्रूएल क्रूएल चीज है, वेरी क्रूएल एंड टोटली ह्यूमन राइट्स, आई मीन अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के पूरा ऑपोजिट में है ये। तो ये भयंकर स्थिति है मैं जो बताना चाहती हूँ। और कलकत्ता तो एज आई टोल्ड यू कलकत्ता एकदम रैंक का ऊपर में है।
जैसे कि आपने कहा कि कलकत्ता रैंक में ऊपर के है, बहुत सारी बॉर्डर भी है और ये ग्लोबल इश्यू है हम सब जानते हैं, तो आप बताइए कि किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं जिनसे उनको इकोनॉमिकली एम्पावर किया जाता है, आर्थिक तौर पे सशक्त किया जाता है।
हाँ, एक तो देखिए पहले मैं थोड़ा सा उनका वल्नरेबिलिटी बताना चाहती हूँ आपको, तो पता चलेगा कि एम्पावरमेंट इतना इजी नहीं है। एक तो वी आवर सेल्फ इंडिया इज वेरी पॉपुलेटेड कंट्री, वी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक तो है एजुकेशन के लिए भी हम लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये जो मोस्टली ये जो बच्चे लोग आते हैं ना एक्सट्रीम पॉवर्टी से आते हैं, और जहाँ पर आपका एजुकेशन एक्सेस करना, एजुकेशन या कोई किसी तरह की स्किल बिल्डिंग जिसमें जॉब मिले वो एक्सेस करना मुश्किल होता है। तो डेफिनेटली पॉवर्टी एक है और जॉब एक्सेस, जॉब और स्किल बिल्डिंग एक है, लेकिन ज्यादातर ट्रैफिकिंग हम लोग हमने जो देखा है लास्ट 10 ईयर अपना काम करते हुए, वो आपका आते हैं फैक्ट्रीज और मिल्स से आते हैं। मतलब वो लोग चाइल्ड लेबर जो छोटा छोटा बच्चे को काम करने के लिए दे देते पेरेंट्स, उधर ही से ट्रैफिक हो जाता है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। तो मतलब हम लोग को जो लड़की, जो छोटा लड़की मिलता है वो वेरियस किसी भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होता है। तो हम लोग जो करते हैं वो शेल्टर होम के साथ, गवर्नमेंट शेल्टर होम के साथ टाई अप करते हैं, आउटरीच करना पड़ता है। मतलब वो लड़की लोग मेरे पास नहीं आते, हमको ढूंढ ढूंढ के जाना पड़ता है कहाँ पर वो लड़की मिलेंगे। तो गवर्नमेंट शेल्टर होम सबसे बेस्ट है क्योंकि रेस्क्यू जो होता है पुलिस के हेल्प में सब रेस्क्यू होते हैं, ब्रॉथल रेस्क्यू, होटल्स में जाकर रेस्क्यू करके सभी अंडर एज लड़की को, चाइल्ड ट्रैफिकिंग मोस्टली इसको चाइल्ड ट्रैफिकिंग मैं बोलूंगी, बच्चे लड़की को गवर्नमेंट होम पे लाना जाता है। और गवर्नमेंट होम में मतलब सर्विस भी मिनिमम है, पॉसिबल नहीं है कि बहुत अच्छी तरह सर्विस देते। तो हम लोग उधर टाई अप करके, हम लोग का ट्रेनिंग चलता है शेल्टर होम के अंदर पे, तो उधर में हम लोग, अब वो लोग बहुत डैमेज होती है रेस्क्यू के बाद, लाइक 14 साल की 11 साल की लड़की को ब्रॉथल में भेज दिया जाता है, टॉर्चर होते हैं, अब्यूज होते हैं, ड्रग देते हैं, काम करना पड़ता है, गंदा काम करना पड़ता है, तो वो लोग पूरा मेंटली एकदम टूट चुके होते हैं। तो इसीलिए ये प्रोसेस इतना धीरे धीरे प्रोसेस है, 1-2 साल लग जाता है कि उसका मेंटल कंडीशन ठीक करे, थेरेप्यूटिक काम से शुरू होता है, थोड़ा क्राफ्ट, थोड़ा सा एजुकेशन, उसके बाद हम लोग टीचिंग करवाते हैं एंड वो लोग हमारा बिजनेस ज्वाइन करते हैं। ये बिजनेस भी सोशल बिजनेस है, ये डेडिकेटेड है उसी लड़की के लिए। बाहर पे अच्छा सा स्किल मिल जाता है हम लोगों को, बहुत अच्छे स्वीवर है, अच्छा बैग बनाते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं वही लड़की लोगों को देके हम लोग उन लोगों को एम्पावर मिले।
जी बिल्कुल सही बात है, यूं कहा जाता है कि हमेशा चैलेंजेस के बाद सफलता मिलती है और वो हमेशा प्यारी होती है, और आप जिस काम को लेकर बैठे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत सारी सफलता मिले इस काम में और आप अन्यों की जिंदगी इसी तरह से संवारती रहे। SBS हिंदी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हाँ, शुक्रिया आपको ये मौका देने के लिए, क्योंकि हम लोगों का आवाज पहुंचाने के लिए बहुत ही शुक्रिया।